चुनाव के दिन की उल्टी गिनती जारी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर भारतीय समुदाय पैनी नजर बनाए हुए है। केवल भारतीय समुदाय ही नहीं वरन पूरे देश के लिए ही घरों की कीमतें और बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही में दोनों गठबंधन और लिबरल पक्षों ने कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने का वादा तो किया ही है। जहां एक ओर गठबंधन सुपर एनुएशन से घर की खरीदी के रास्ते खोल रही है, वहीं लेबर ने घर खरीदी के भार को साझा करने का वचन दिया है। दोनों ही मामलों में दोनों दलों के वित्तीय प्रबंधन को कटघरे में पाया गया है। प्रफुल्ल जेठवा अपने आप को नया प्रवासी बताते हैं। वे भारतीय समुदाय में धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर सक्रिय तो हैं ही, साथ ही वे रियल एस्टेट व्यवसायी भी हैं। हमारा नेता कैसा हो, सवाल के जवाब में और अपने नेतृत्व के अपेक्षित गुणों में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रवास जैसे मुद्दों को वो देखना चाहते हैं, लेकिन एक और मुद्दा है जो उनके लिए बहुत जरूरी है।
मैं जब यहाँ पर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि दिस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज एन इंडिविजुअल वोटर फॉर मी इज वित्तीय मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल फिस्कल मैनेजमेंट जो है, क्योंकि हम सबकी लाइफ अभी यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मेरे लिए रहेगा।
वे कहते हैं कि अब तक वे किसी एक दल का चुनाव नहीं कर पाए हैं क्योंकि
I cannot pinpoint any particular party because I'm still reading their manifestos. I have been attending meetings and looking at all the what. And also, मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो individual candidates जो है उनका caliber भी मैं देखता हूँ कि yes, party तो है लेकिन वो individual candidate जो है उसका caliber क्या है, वो समाज समुदाय को क्या दे सकता है as a representative of that constituency. तो ये भी मैं देखता हूँ।
हाल ही में बढ़े ब्याज दर और घरों को खरीदने के सामर्थ्य के संबंध में वे कहते हैं कि
देखिए, इंटरेस्ट रेट तो जैसा कि हम सब जानते हैं इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली लो और वो आगे तो जाना ही था, और उसमें इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन जब अब बढ़ा है तो इंटरेस्ट रेट तो अब जाना ही था। उससे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी में क्या फ़र्क आएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है उसके सिर्फ इंटरेस्ट रेट से मायने नहीं रखते, उसके अलावा जो डिमांड सप्लाई का जो एक रेशियो है दैट हैज़ ऑलवेज बीन नॉट इन बैलेंस, स्पेशली इन द बिग सिटीज़ लाइक मेलबर्न, सिडनी एंड नाउ वी कैन ऑल्सो इंक्लूड सिटीज़ लाइक ब्रिस्बेन इन दैट कैटेगरी। तो इंटरेस्ट रेट अभी तो सिर्फ 0.10 बेसिस पॉइंट पर बढ़ा है, तो उससे मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं देखता कि रियल एस्टेट में कोई ज़्यादा उससे कोई दबाव बने। हालांकि अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से अगले दो साल तक इफ़ इट कंटिन्यूज टू गो हायर एंड हायर एंड इफ़ इट गोज़ टू अ लेवल वेयर इट विल बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मैनी हाउस ओनर्स एंड मैनी टू बी हाउस ओनर्स and that level could be between 2.5 and 3%. So that is where we will see ki ek dabav aayega housing affordability par, lekin abhi to jaisa ki hum dekhte hain real estate mein, jaise ki aaj subah mere open home the aur fir maine dusre agents ke open home dekhe jisme ek rental ka open home tha, mere baad mein puri 11-15 groups ki line lagi hui thi, to rental ka market itna hot hone ka karan yahi hai कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इज़ एन इश्यू एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड द हाउस बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनी टाइम सूनर डिस्पाइट द इंटरेस्ट रेट हाइक्स।
तौफीक अहमद सिडनी में एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हैं। वे एक सक्रिय रंगकर्मी भी हैं और खुद को सबसे पहले एक कलाकार बताते हैं। उनके लिए उनके नेता वही होंगे जो कला की भूमिका समझें और इसकी इज्जत करें।
रुशाली, मैं कलाकार हूँ और मेरे लिए वही दल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कला को उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है जितनी मैं देता हूँ। और अगर मैं एडम बैंड की एक रीसेंट ट्वीट के हिसाब से देखूँ तो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इस साल कुछ 147 या 148 बिलियन डॉलर्स जो है इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, और आर्ट्स इंडस्ट्री जो है माइनिंग से चार गुना ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉय करता है। उसके बावजूद आज अगर कोई भी ऐसा दल है जो ये कहता है कि आर्ट्स जो है हमारे सेकेंडरी प्रायोरिटी में आता है, वो दल हमारे लिए बिल्कुल जो है हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी से जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिस भी दल को अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ाना, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इस बहुत नुक्ते को जो है ध्यान में रखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैंडेमिक के दौरान जो पिछले 2 साल में अगर हमने किसी की मेंटल हेल्थ की तरफ से अगर देखा हो, या तो फिर अगर हमने किसी के नॉर्मल लाइवलीहुड के हिसाब से देखा हो, तो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने जो है सबसे ज़्यादा जो है योगदान किया है।
घर खरीदने के सामर्थ्य यानी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के मामले में तौफीक कहते हैं कि ये घरों को खरीदने का मुद्दा परिवारों को जोड़ने से भी जुड़ा है।
ऋषाली, मेरी एक बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट जो रहता है मेरी नज़र से ये होता है कि एक हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम यहाँ पर रह रहे होते हैं, हम आप सारे ही इस फेज़ से गुजरे हैं जहाँ पे हम $100 दे के, $150 दे के हफ्ते में किसी तरह की यहीं पे एक बेड ले के रहा करते थे, और फिर हमने रेंटल जो है शुरू किया। हमारी रेंटिंग से ले के प्रॉपर्टी ओनरशिप की जो जर्नी है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लंबी है, और वो अफोर्डेबिलिटी में कहीं ना कहीं आ जाती है। तो अगर तो सरकार हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर बुला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 बेडरूम में शेयर कर रहे होते हैं रेंट्स को। तो बनिस्बत के वो कि अगर हम अफोर्ड कर सकें बड़े घरों को, तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग पेरेंट्स तो वो दुनिया भर में ज़्यादा है ही, क्योंकि पेरेंट्स जब भी आते हैं 70-80% ऑफ द टाइम नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन की तरह आते हैं, तो वो गवर्नमेंट की ऊपर भी एक लाइबिलिटी होती है, और हमारे लिए तो वो एक इमोशनल डिसीजन होता है, क्योंकि हमें अपने माता पिता को अपने पास रखना है। तो वो इमोशन और प्रैक्टिकलिटी के जो ब्रिज है वो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और माइग्रेशन कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरे लिए जो है ज़रूरी होगा कि सरकार जो भी आगे आती है वो इन जो है नुकतों पर तवज्जो दे।
प्रफुल्ल जेठवा मानते हैं कि राजनीतिक दलों को कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे आने वाली सरकार हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का मसला सुलझा सकती है।
भारतीय समुदाय की अगर बात करें तो होम ओनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन देयर लाइफ। एनी माइग्रेंट, एनी भारतीय, जो भी भारतीय समुदाय के जो यहाँ पर आए हैं, उनको अगर बात करें तो जो उनके माइलस्टोन होते हैं उसमें होम ओनरशिप उनका एक ड्रीम रहता है। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला तो जो है वो स्टैम्प ड्यूटी बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे अभी आप सोचिए कि थोड़ी बहुत सहूलतें हैं जहाँ पर आपको स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन मिलता है, तो अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी तो उससे डेफिनेटली एक मदद मिलेगी। दूसरी बात, मेलबर्न और सिडनी में जो औसतः जो घरों की कीमतें हैं या अपार्टमेंट्स में कीमतें हैं, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो गवर्नमेंट ने जो एक कैप रखा है स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन का, उस कैप को अभी और भी आगे ले जाके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन का जो कैप है उसमें ना तो कोई अपार्टमेंट खरीद सकता है ना तो कोई घर खरीद सकता है। तो दे आर स्टिल आउट ऑफ पॉकेट इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड इट्स अ वेरी बिग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट होम बायर्स। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट तो कंट्रोल में रहना ही चाहिए, लेकिन दैट इज़ बियॉन्ड आई गेस एनी पोलिटिकल पार्टी। इट सिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट ऑल्सो गोज विद द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो एक तो दूसरा फैक्टर ये है। तीसरी बात ये है कि जो रीजनल सेंटर्स हैं उनके ऊपर अभी ये मेरा पर्सनल मानना है कि इतना फोकस नहीं है।
धीरज पांडे एक लंबे अरसे से लेबर से जुड़े भारतीय समुदाय के सदस्य हैं। उनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का मुद्दा आज नया नहीं आया।
एक जो पॉइंट है जो बर्निंग इश्यू कह सकते हैं, और वो हाल फिलहाल में कुछ महीनों और साल से आ रहे हैं, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ये सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए नहीं है, है तो सबके लिए, लेकिन भारतीय समुदाय भी इसे इस टाइम पे पीड़ित हैं। अगर आप देखेंगे आज की डेट में आपका रेंट है वो 40-50% ऑलरेडी है, और वो ऊपर जा रहा है इस टाइम पर। उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ आनी चाहिए, एटलीस्ट अभी लिबरल के टाइम पे तो दिख नहीं रही है, और लेबर ज़रूर प्रॉमिस कर रही है कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करेंगे, हाईटेक प्लांट, नॉट कोई भी साधारण प्लांट नहीं, हाईटेक, जिससे कि हाई वेजेस हों और लोग अपना जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसे मैनेज कर पाएँ।
जहाँ तक बात घर खरीदने के सामर्थ्य की आती है, उनके पास दोनों ही दलों के लिए कुछ सुझाव हैं।
कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो हर पार्टी सोच रही है कि फर्स्ट होम बायर को कैसे लुभाया जाए, और लिबरल पार्टी की पॉलिसी अभी है कि 10,000 सीट्स हैं, हम 5% देंगे एंड सो ऑन। लेबर पार्टी का भी अपना है कि वो 30% तक इक्विटी शेयर करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं चाहूँगा कि लेबर पार्टी भी करे, वो ये कि जब होम बायर जाता है मार्केट में और बिल्डर और होम बायर के बीच में जो संधि और कॉन्ट्रैक्ट होता है वो काफ़ी हद तक वन साइडेड होता है और बायर हर समय लूज़र होता है। तो आप कोई भी पॉलिसी लाएंगे, ये सफल अच्छे से नहीं हो पाएगी जब तक कि ये बैलेंस ना बनाया जाए कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डर और फर्स्ट होम बायर के लिए।
घर खरीदने का सपना फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई आंखों में चमक भी रहा है और चुभ भी रहा है। जहां तक समुदाय की बात है, वे मानते हैं कि किराएदार से मकान मालिक होने का सफर आसान करने वाले दल को ये कहा जा सकता है कि हमारा नेता ऐसा हो। SBS हिंदी के लिए हमारा नेता कैसा हो श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी को आपके लिए प्रस्तुत किया है वृषाली जैन ने।